क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
नमस्कार। विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा प्रस्तुत क्षितिज कार्यक्रम में मॉरिशस तथा विश्व के सहृदय श्रोताओं का स्वागत है। डॉक्टर संयुक्ता का सप्रेम अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज हमारे चर्चा का विषय है वर्तमान समय हिंदी एवं संस्कृत की गरिमायुक्त स्थिति, और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन MBC में हमारे साथ पधारे हैं आदरणीय प्रोफेसर जतिंद्र मोहन मिश्रा जी, जो मूलतः भारत से, जन्मभूमि उड़ीसा से हैं। आजकल वे महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में संस्कृत और भारतीय दर्शन के ICCR चेयर पद पर कार्यरत हैं। प्रोफेसर मिश्रा जी, विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्रोफेसर जतिंद्र मोहन मिश्रा जी संस्कृत के अनुभवी विद्वान हैं, जिन्होंने देववाणी संस्कृत के पठन पाठन संबंधी अनेक पुस्तकों का लेखन और संपादन भी किया है। इस भाषा के प्रचार प्रसार हेतु आपने अध्यापकों तथा अन्य वर्गों के लिए भी अनेक कार्यशालाओं का आयोजन भी किया है। वैसे विधिवत रूप से आप नई दिल्ली स्थित NCERT अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग नामक विश्व प्रसिद्ध शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में सेवारत हैं। तो प्रोफेसर मिश्रा जी, सर्वप्रथम, वैसे तो विश्व की हर भाषा का नाम कहीं ना कहीं उस देश से जुड़ा होता है, जैसे इंग्लैंड की भाषा इंग्लिश, चीन की भाषा चीनी, फ्रांस की भाषा फ्रेंच, हिंदुस्तान की भाषा हिंदी। लेकिन संस्कृत एक ऐसी अनोखी निराली भाषा है जो भारतीय संस्कृति, दर्शन, भारतीय साहित्य, धर्म अपने में सब कुछ जैसे समाई हुई है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं प्रोफेसर जी, इस दृष्टि से संस्कृत भाषा की विशेषताएं क्या हैं?
जी, ये बहुत ही उचित प्रश्न है कि सभी भाषाएं अपने प्रांत से जुड़कर नाम से बना हुआ है, लेकिन संस्कृत ऐसा नहीं है। ये संस्कृत के नाम में ही इसका रहस्य पता चलता है। संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत शब्द जो है वो सम उपसर्ग कृ धातु से बनता है, जिस धातु से संस्कार संस्कृति जैसे शब्द निकलते हैं उसी धातु से संस्कृत शब्द भी निकलता है। संस्कृत शब्द का अर्थ ये हो जाता है कि परिष्कृत, रिफाइंड, प्यूरिफाइड। तो जो भाषा पूरी तरह से प्यूरिफाइड कर दिया गया हो, यानी इतना व्याकरण निष्ठ कर दिया गया हो कि आप कहीं अपवाद न देख पाएँ, पूरी तरह से व्यवस्थित सिस्टमेटिक भाषा का जो स्वरूप है वो संस्कृत है। तो ये जो संस्कृत है, जो वैदिक भाषा के समय में, वैदिक काल में प्रचलित थी, परवर्ती काल में ये लौकिक अभिजात संस्कृत में परिवर्तित हुई, और उसमें जो व्याकरण बन गया उसके बाद से ये चिरस्थायी भाषा बन गई, और उसी भाषा से ही अनेक प्रकार के प्राकृत भाषाएं, अपभ्रंश भाषाएं और आधुनिक भारतीय भाषाएं उसमें से निकलते हैं। अनेक भाषा विज्ञानी लोग कहते हैं कि ये संस्कृत भाषा यूरोपीय भाषाओं की भी जननी है जी। केवल भारत के ही नहीं, यूरोपीय भाषाओं की भी ये जननी है। वैसे संस्कृत भाषा का संबंध पूरे यूरोप और जो अरब देश और हिंदुस्तान, कुछ पूर्वी एशियाई देशों के भी साथ संबंध रखता है। बहुत आदान प्रदान उन भाषाओं का आपस में हुआ है, और उन सब में प्राचीनतम स्रोत जो है वो संस्कृत भाषा है। इसके खास विशेषताएं कुछ अगर कहने जाएं तो क्या क्या हम कह सकते हैं? पहली बात है कि इसमें एक व्यवस्थित वर्णमाला है। इतनी ये व्यवस्थित वर्णमाला है जो आपको किसी दुनिया में किसी भाषा के वर्णमाला में वो व्यवस्थितता नहीं दिखाई देगी। हमारे पहले स्वर वर्ण आते हैं, उसमें भी जो मूल स्वर होते हैं, फिर जो संयुक्त स्वर होते हैं, उनका जो क्रम है, फिर उच्चारण के स्थान अनुसार हमारे सारे वर्गीय वर्ण आते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब जो है उनके उच्चारण स्थान के अनुसार है। सबसे अंदर जो उच्चारण स्थान है कंठ या जिह्वा का मूल भाग, वहाँ से क वर्ग आता है, फिर उसके बाद च वर्ग आता है, च छ झ ञ, ये तालु है, उसके बाद मूर्धा है जो टठ डढ़ण वाला, और फिर उसके बाद दंत है तथ दधन, और उसके बाद आता है ओष्ठ जो है प फ व भ, ये प वर्ग के वर्ण। तो इस प्रकार के व्यवस्थित वर्णमाला संस्कृत ने दिया है और इसी से ही बाकी से भारतीय भाषाएं उद्धृत किए हैं। इसी प्रकार इसका एक अनुशासित व्याकरण है, जैसे मैं अभी कहा कि पूरी भाषा को 4000 सूत्रों में ही पाणिनि ने बांध लिया था। इतना व्यवस्थित व्याकरण की संरचना और किसी भाषा का दुनिया में नहीं है, और संस्कृत भाषा के व्याकरण पैटर्न को लेकर ही भारत की बाकी भाषाओं का सब उत्थान हुआ है। इसके अलावा और खासियत क्या है इसमें कि इसके जो उच्चारण हैं वो बिल्कुल लिपि अनुसार है, उच्चारण अनुसार लिपि है, लिपि अनुसार उच्चारण है, कहीं पर भी अपवाद नहीं है। इतनी पक्की व्यवस्था और किसी भाषा के साथ आपको नहीं मिलेगा। यूरोपीय भाषाओं को तो आप छोड़ दीजिए, भारतीय भाषाएं यद्यपि वो संस्कृत के ही अनुकरण करते हैं तो लिपि अनुसार करते हैं, किंतु उतना 100% प्योर नहीं हो पाते हैं जितना संस्कृत है। इसके अलावा इसके अच्छे उच्चारण करेंगे तो इसमें बहुत सारे प्राणायाम वाले लाभ मिलते हैं, यानी वो स्वास्थ्य के अनुकूल होते हैं। इस भाषा की विशेषता ये है कि आप संस्कृत भाषा में दो यूनिक वर्ण हैं जो और किसी भाषा में नहीं है, अनुस्वार है, विसर्ग है। आप अनुस्वार के बहुल प्रयोग करते हैं तो एक प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम होता है, और विसर्ग का उच्चारण करते हैं तो उसमें भस्रिका का प्राणायाम रूप मिलता है। स्मरण शक्ति को देखते हुए हम कहेंगे कि संस्कृत भाषा में वो शक्ति है जो आपके मेमोरी पावर को बहुत जल्दी प्रभावित करता है और बढ़ाता है उसको। यहाँ तक कि आपको संस्कृत में ही ऐसे विद्वान दिखेंगे जो लाखों लाख संस्कृत श्लोक याद रखते हैं। तो ये है संस्कृत की कुछ बहुत कम बहुत हम विशेषताओं को बता रहे हैं।
कहते हैं ना जी, संस्कृत जो है जननी भाषा है।
जी
प्रोफेसर जी, भारत में जब बनारस में अध्ययन काल में गुरु तुल्य आदरणीय राजवैद्य पंडित शिव कुमार शास्त्री जी ने एक बार हमसे कहा था कि यदि आप शुद्ध परिष्कृत हिंदी का ज्ञाता बनना चाहती हैं तो संस्कृत भाषा तथा संस्कृत साहित्य का ज्ञान अनिवार्य है। और आप हमें बताएं कि हिंदी और संस्कृत भाषा का यह घनिष्ठ संबंध कैसा है, यह नाभि नाल संबंध कितना सशक्त है?
जी, हिंदी और संस्कृत का संबंध वैसा है जो माँ और बेटी का संबंध है। वैसे तो भारत के सभी भाषाएं संस्कृत की ही बेटी है, और क्योंकि संस्कृत भाषाओं की जननी है, उनमें हिंदी एक सबसे लाडली बेटी है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जो आज की हिंदी है, समझ लीजिए कि वही कल का संस्कृत था। जो कल का संस्कृत भाषा थी, कल की जो संस्कृत भाषा थी, वो आज हिंदी भाषा है। यानी अखिल भारतीय भाषा पुराने ज़माने में, प्राचीन काल और मध्यकाल में संस्कृत भाषा थी, और आज के ज़माने में वो हिंदी भाषा है भारत में। जो लिंक लैंग्वेज के रोल उस समय संस्कृत भाषा करती थी, वो आज हिंदी भाषा कर रही है। और ये इतना इनमें तादात्म्य है कि जैसे ही आप हिंदी भाषा को शुद्ध करने जाते हैं, वो संस्कृत के रूप में रूपांतरित हो जाती है। और जब हम हिंदी भाषा को बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे हम मिश्रित भाषा बोलते हैं, उसमें उसमें तत्सम शब्दावली को कम कर लेते हैं, और अंग्रेजी और फारसी शब्दों को मिलाकर हम आज के जो हिंदुस्तानी हिंदी भाषा कहते हैं, जैसे ही आप उनको फिल्टरिंग करते जाएंगे वो सीधे संस्कृत के स्वरूप में पहुंच जाती है। यानी यूँ कहे कि अगर आप साहित्यिक हिंदी या शुद्ध हिंदी कहेंगे तो वो संस्कृत के ही रूप को आपको देखने को मिल जाएगा। ये है हिंदी और संस्कृत के बीच में संबंध। कम से कम 60-70% 60-70% शब्दावली जो है हिंदी के वो सीधे संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम और तद्भव शब्द हैं। देशज और वैदेशिक की संख्या बहुत कम है, हो जाती है।
इसी दिशा में हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि यह सर्वविदित है कि हिंदी भाषा समय के साथ विकसित होती जा रही है, और इसका प्रमुख कारण है कि समय के साथ साथ हिंदी भाषा विभिन्न भाषाओं विभिन्न बोलियों की शब्दावली को विशाल हृदया हिंदी जो है आत्मसात करती जा रही है, नए शब्दों का आविष्कार भी करती जा रही है। जैसे अभी देखिए कोविड का समय, तो मास्क के लिए भी नया शब्द आ गया, और वो शब्द है मुखावरण। तो इसीलिए हिंदी हम कह सकते हैं तीव्र गति से अविरल धारा रूप में बहती जा रही है। इस दिशा में संस्कृत भाषा के बारे में आपका क्या विचार है?
संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि जमाना जितना आगे आगे चलता है उसमें भाषाओं का मिश्रण बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हिंदी भाषा करोड़ों अब्जों लोगों के द्वारा बोली जाती है, और वो उतने लोग बहुत अधिकाधिक भाषाओं से इंटरैक्शन करते हैं, तो इसीलिए हिंदी भाषा में स्वभावतः बहुत सारे विदेशी शब्द आ जाते हैं और उनको ये समा लेती है। वहीं जब हिंदी को अपना कोई एक शब्द बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो उनको संस्कृत के ही शब्दावली के आश्रित होना पड़ता है। जैसे अभी आपने कहा कि मास्क जो है एक नया कंसेप्ट है, और उसके लिए शब्द बनाना पड़ा, तो कहाँ से शब्द मिला? मुखावरण, मुख और आवरण दोनों संस्कृत के ही शब्द हैं, इन्हीं से ही वो बनाकर मुखावरण शब्द बनाया गया। तो इसी प्रकार जितने प्राचीन काल में आप जाएंगे तो उसमें भाषा के थोड़े मूल रूप, या यूँ कहें कि प्योर शुद्ध रूप आपको मिलने लग जाता है, और जमाना जितना आगे बढ़ता है तो भाषा मिश्रित होने अधिक, ये स्वतः प्रवृत्ति है, इसमें कोई गलत या सही की बात नहीं है। तो जैसे हिंदी सब कुछ असिमिलेट करती है अपने आप में, वैसे ही अंग्रेजी पूरी विश्व के शब्दों को असिमिलेट करती है। एक ज़माना था संस्कृत में भी इसी प्रकार से कार्य होता था, चूँकि अभी संस्कृत के स्पीकर्स उतने ज़्यादा नहीं हैं इसलिए इसमें मिश्रण ज़्यादा नहीं हो पाता है।
और अंत में हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आज प्रौद्योगिकी के इस युग में यह धारणा है कि कंप्यूटर अर्थात संगणक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए संस्कृत एवं हिंदी विश्व की सबसे वैज्ञानिक और उपयुक्त भाषाएं हैं, आपका क्या विचार है?
मैंने जो अभी इससे पहले कुछ विशेषताओं के बारे में कह रहा था वो वस्तुतः उसके वैज्ञानिक स्वरूप को ही सूचित करता था, कि किस प्रकार से व्यवस्थित वर्णमाला है, व्यवस्थित व्याकरण है, उसके उच्चारण कितने प्यूरिफाइड है, ये सब। इसके अतिरिक्त कुछ वैज्ञानिकों का मत ऐसा है कि ये संस्कृत भाषा की जो संरचना है वो कंप्यूटर की भाषा की तरह है। एग्जैक्टली कंप्यूटर की भाषा नहीं है किंतु कंप्यूटर की भाषा की तरह है, अर्थात जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर में यूज किया जाता है तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल संस्कृत के ही प्रकृति प्रत्यय उपसर्ग जो उसके डिक्लेंशंस होते हैं इस प्रकार के ही प्रक्रिया से वो गुजरता है, और वही प्रक्रिया संस्कृत भाषा के ही स्ट्रक्चर में है। तो ये साम्य भाव को देखते हुए उन साइंटिस्ट ने कहा था, खास करके 1985 और 86 में नासा के किसी वैज्ञानिक ने एक लेख लिखा था कि संस्कृत शायद कंप्यूटर के लिए सबसे सूटेबल भाषा है, और उसका कारण यही था कि इसके स्ट्रक्चरल अप्रोच वो अनबीटेन है बिल्कुल कंप्यूटर लैंग्वेज की तरह।
तो हमारे प्रिय श्रोताओं, यह सत्य है कि ईश्वर प्रदत्त संस्कृत और हिंदी दोनों जननी हमारे धर्म हमारी संस्कृति हमारी आर्य सभ्यता की आधारशिलाएं हैं, और धन्य भाग्य हमारा कि ये आधारशिलाएं समय के साथ सुदृढ़तम होती जा रही हैं। प्रोफेसर जतींद्र मोहन मिश्रा जी, आपके दिव्य परिपक्व और गहन अनुभवों के लिए आपके प्रति कोटिशः अनुग्रहित हैं। हमारे प्रिय श्रोताओं, आपके समय और आपके ध्यान के लिए हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।
नमस्कार।
क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।